ओम शांति, ओम शांति। कल बाबा ने इस दुनिया के लिए क्या कहा? ये दुनिया क्या है? क्या कौन सा शब्द यूज किया? कल किचरे का डब्बा। और आज बाबा ने दूसरा शब्द यूज किया इस दुनिया के लिए, ये है मुर्दों की दुनिया। अब मुर्दों से कोई प्रीत रखता है क्या? गीत में ना, मुर्दों से क्या यारी। तो अगर किसी के नाम रूप में फंसते हैं या किसी में मोह हो जाता है तो क्या कहेंगे? मुर्दे से प्रीत रखी है। तो आज बाबा ने ये कड़ा शब्द यूज किया, ये मुर्दों की दुनिया है, इनसे क्या प्रीत रखें। गीता में भी बताते हैं, जब अर्जुन बहुत मोह दिखा रहा था तो अर्जुन को भगवान ने साक्षात्कार कराया, देखो ये सब मरे पड़े हैं, एकदम शमशान दिखा दिया, सब डेड बॉडीज, और ये इनका हाल होने वाला, ये सब मर जाएंगे। और जब अर्जुन ने ये साक्षात्कार किया, ये सब मेरे कारण मरेंगे, मैं निमित्त बनूंगा, तो और भी उसको दुख हुआ, तो मैं निमित्त नहीं बनना चाहता हूं। लेकिन उनको ये सब क्यों कहा गया? ताकि मोह नष्ट करे, क्योंकि आखिर तो सबको मरना ही है। इसलिए बाबा भी हमें कहते हैं ये मुर्दों की दुनिया है, तो किसी के भी नाम रूप में मत फंसो। नाम रूप में फंसे माना ये भूल गए कि ये मुर्दों की दुनिया है। तो नाम रूप में न फंसे उसके लिए क्या करना होगा? देह अभिमान से न्यारा होना होगा, क्योंकि देह अभिमान के कारण ही नाम रूप में फंसते हैं, फिर उसकी ही याद आती है, फिर बाबा भूल जाते हैं। तो इसीलिए आज बाबा ने बच्चों को बहुत सावधान किया है। तो भिन्न भिन्न रूप से बाबा इस दुनिया, कलयुगी दुनिया के लिए वैराग्य दिलाते हैं, कभी विनाश की बात करते हैं, सब कैसे मच्छरों सदृश मुंह में जाते हैं, यहाँ विराट रूप दिखाते हैं ना, विष्णु का विराट रूप, सब मुंह इतना बड़ा मुंह और उसमें सब मच्छरों सदृश जाते हैं। कल भी बाबा ने कहा गेट वे टू हेवन, गेट वे, तो वो याद रखे, वो सृष्टि चक्र में संगम, सब आत्माएं जा रही है ऊपर। तो ये बातें सोचेंगे तो कहीं भी आकर्षण नहीं जाएगा इस कलयुगी दुनिया में। तो आज बाबा ने फिर से याद दिलाया है, तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। नाम रूप में फंसने से क्या नुकसान होता है वो भी बाबा ने बताया है। तो आज 5/4/2025 है। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना है। देखना है अपने अंदर, किसी देहधारी की याद तो मुझे नहीं आती है, कहीं वो बार बार सताती तो नहीं है? अगर सताती है वो याद तो जरूर नाम रूप की बीमारी है। तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना है, उल्टा खाता नहीं बनाना है। नाम रूप की बीमारी होगी तो उल्टा खाता तो बनेगा ना, या कुछ न कुछ ऐसी दृष्टि तो जाएगी, तो उल्टा खाता नहीं बनाना है। एक बाप की याद में रहना है। नाम रूप की बीमारी होगी तो बाबा की भी याद नहीं रहेगी। प्रश्न, भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना देते हैं? कल बाबा ने कहा पास विद ऑनर बनना है, चारों सब्जेक्ट्स में पास होना है, आज बाबा कहते भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना देते हैं, वो पुरुषार्थ करते हैं तो भाग्य बन जाता है। उत्तर, भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं, किसी को दुख न मिले ये पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि दुख मिलेगा किसकी आह निकलेगी, किसकी बद्दुआ निकलेगी, तो फिर तो हिसाब किताब तो बन ही जाएगा। तो भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा कोई को दुख नहीं देते हैं। और क्या करते हैं भाग्यवान बच्चे, शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बनता जाता है। अब क्रोध करते रहेंगे, ईर्ष्या नफरत करते रहेंगे, कुछ बोल देंगे ऐसे कड़वा, तो भाग्य कहाँ बनेगा और ये भाग्य खत्म होगा। तो शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बनता जाता है। तुम्हारी ये स्टूडेंट लाइफ है, तुम्हें अभी घुटके नहीं खानी है। आज बाबा ने कहा घुटके नहीं खाने। घुटके कैसे खाते हैं, किसी के नाम रूप में फंसते हैं या कोई ऐसा गलत काम करते हैं तो अंदर में मन तो खाता है ना, तो ये मन खाना माना घुटके खाना। तुम्हें अब घुटके नहीं खाने हैं, अपार खुशी में रहना है। गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। ओम शांति। सभी बच्चे मुरली सुनते हैं, जहां भी मुरली जाती है, हाँ सभी जगह सुनते हैं। सब जानते हैं कि जिसकी महिमा गाई जाती है वो कोई साकार नहीं है। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, ये महिमा कोई साकार की नहीं है, निराकार की महिमा है। निराकार साकार द्वारा अभी सम्मुख मुरली सुना रहे हैं। ऐसे भी कहेंगे, क्या कहेंगे, अभी हम आत्मा उन्हें देख रहे हैं, केवल सुन नहीं रहे हैं, वो केवल सुना नहीं रहे हैं, हम उन्हें देख भी रहे हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, देखो इसलिए इतना बड़ा हम बाबा का फोटो लगाया, यही समझो अभी शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सुना रहे हैं। ऐसे भी कहेंगे हम आत्मा उन्हें देख रहे हैं, आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इन आंखों से देखने में नहीं आती। भक्ति मार्ग में भी जानते हैं कि हम आत्मा सूक्ष्म है, भक्ति में भी मानते हैं आत्मा सूक्ष्म है, परंतु पूरा रहस्य बुद्धि में नहीं है कि आत्मा है क्या। परमात्मा को याद करते हैं परंतु वो है क्या, कौन है, बाबा कहते नहीं समझते, ये दुनिया नहीं जानती। तुम भी नहीं जानते थे, जानते थे क्या कि परमात्मा कौन है, जब तक हम यहाँ नहीं आए बाबा के नहीं बने थे, तुम भी नहीं जानते थे। अभी तुम बच्चों को ये निश्चय है कि ये कोई लौकिक टीचर व संबंधी भी नहीं है, लौकिक टीचर नहीं हमें पढ़ा रहा है, लौकिक संबंधी नहीं पढ़ा रहा है, तो परम पिता परमात्मा हमें पढ़ा रहा है। जैसे सृष्टि में और मनुष्य है वैसे ये दादा भी है ब्रह्मा बाबा। तुम जब महिमा गाते थे त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तो समझते थे कि वो ऊपर में है। अभी बाप कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है, मैं वही इसमें हूँ, मैं वही इसमें हूँ। आगे तो बहुत प्रेम से महिमा गाते थे, डर भी रखते थे, हाँ भगवान देख रहा है कोई पाप नहीं करो, तो डर भी रखते थे। अभी तो वो यहाँ इस शरीर में आए हैं, अभी भी कहेंगे ना बाबा हमारे साथ है। ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म रूप में भी जरूर आते होंगे, बच्चों को देखते होंगे, हम वतन में हमारा इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन देखते देखने भी तो आते होंगे ना। तो बाबा कहते अभी तो वो यहाँ इस शरीर में आए हैं, जो निराकार था वो अब साकार में आ गया है। वो बैठ बच्चों को सिखलाते हैं, दुनिया नहीं जानती वो क्या सिखलाते हैं। कहते हैं वो आएगा आता है लेकिन आकर क्या सिखलाता है दुनिया नहीं जानती। वो तो गीता का भगवान श्री कृष्ण समझते हैं, कह देते हैं वो राजयोग सिखलाते हैं कि श्री कृष्ण ने राजयोग सिखलाया क्योंकि गीता में है, मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। अब ये वाक्य जब पढ़ेंगे गीता में तो क्या सोचेंगे, श्री कृष्ण ने ये राजयोग सिखाया। वो तो गीता का भगवान श्री कृष्ण समझते हैं, कह देते हैं वो राजयोग सिखलाते हैं। अच्छा बाकी बाप क्या करते हैं? अच्छा फिर परमात्मा क्या करते हैं? श्री कृष्ण ही राजयोग सिखलाएगा तो फिर शिव बाबा क्या करते हैं? बल गाते थे तुम मात पिता, परंतु उनसे क्या और कब मिलता है? हाँ क्या और कब मिलता है, जो भी मिलता है मात पिता से क्या और कब मिलता है ये कुछ भी नहीं जानते। गीता सुनते थे तो समझते थे श्री कृष्ण द्वारा राजयोग सीखा था, फिर वो कब आकर सिखलाएंगे? चलो श्री कृष्ण ने राजयोग सिखाया 5000 साल पहले, फिर कब आकर के सिखलाएंगे? वो भी ध्यान में आता होगा। इस समय ये वही महाभारत लड़ाई है, ये वही काल चल रहा है महाभारत लड़ाई का, तो जरूर श्री कृष्ण का समय होगा क्योंकि महाभारत लड़ाई लगी थी श्री कृष्ण था, तो अभी भी वो श्री कृष्ण का समय होगा। जरूर वही हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी चाहिए, वही धर्म ग्लानी का समय बताते तो वही हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी चाहिए। तो दिन प्रतिदिन समझते जाएंगे कि वही महाभारत का समय है, वही विनाश का काल है। जरूर गीता का भगवान होना चाहिए, बरोबर महाभारत लड़ाई भी देखने में आती है। जरूर इस दुनिया का अंत होगा, अंत होगा। दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर चले गए, अब हम तो बैठे ही पहाड़ों पर रहे हैं ना, वो कहते पहाड़ों पर चले गए, तो उनकी बुद्धि में ये आता होगा बरोबर विनाश तो सामने खड़ा है, क्यों पहाड़ों पर चले गए? हाँ समझा होगा ना कि अभी विनाश सामने खड़ा है। अब श्री कृष्ण है कहाँ? ढूंढते रहेंगे, जब तक तुमसे सुने तब तक उनको ढूंढते रहेंगे। हाँ श्री कृष्ण है कहाँ, या कहेंगे कल्कि अवतार, वो कल्कि अवतार है कहाँ, आ चुका है या आएगा वो भी पता नहीं, तो तब तक ढूंढते रहेंगे। जब तक तुमसे सुने कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है शिव है, हाँ जब तक वो सुने नहीं तब तक कैसे समझे, सोचेंगे श्री कृष्ण ही होना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में तो ये बात पक्की है, ये तुम कभी भूल नहीं सकते। अब भूल सकेंगे क्या कि श्री कृष्ण गीता का भगवान नहीं है? हम तो नहीं भूल सकते, हमको पता है शिव बाबा गीता का भगवान है, ये तुम कभी भूल नहीं सकते। कोई को भी तुम समझा सकते हो गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है। दुनिया में तो कोई भी नहीं कहेगा कि गीता का भगवान शिव है सिवाय तुम्हारे, केवल तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही कहती हो कि गीता का भगवान शिव है सिवाय तुम बच्चों के। अब गीता का भगवान राजयोग सिखलाते थे, समझो माने भी, तो जरूर इससे सिद्ध होता है कि नर से नारायण बनाते हैं, क्योंकि राजयोग सिखा कर राजाओं का राजा का मतलब क्या है? राजाओं का राजा मतलब है श्री नारायण, श्री लक्ष्मी, ये राजाओं के राजा थे। तो जरूर फिर वो अगर भगवान गीता का भगवान राजयोग सिखलाते थे तो जरूर इससे सिद्ध होता है कि नर से नारायण बनाते थे। तो तुम बच्चे जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, हाँ कितना स्पष्ट बाबा ने समझाया है गीता का भगवान कौन। तुम बच्चे जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, बरोबर नर से नारायण बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का स्वर्ग में राज्य था ना, अभी तो वो स्वर्ग भी नहीं है तो नारायण भी नहीं है, न स्वर्ग है न नारायण है, देवताएं भी नहीं है, चित्र है, हाँ चित्र तो है देवताओं के, जिससे समझते हैं ये हो करके गए हैं। अभी तुम समझते हो इनों को कितने वर्ष हुए, कितने वर्ष हुए लक्ष्मी नारायण को इस सृष्टि पर आए। तुमको पक्का मालूम है आज से 5000 वर्ष पहले इनों का राज्य था। अभी तो है अंत, लड़ाई भी सामने खड़ी है। जानते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं, तो सभी सेंटर्स के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, है ना, केवल हम ही यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, सब सेंटरों पर यही मुरली चल रही है, तो सभी सेंटर्स के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाते भी हैं, कोई सुनाते हैं तो पढ़ाते हैं और बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। पढ़ाने की युक्ति बड़ी अच्छी है, कैसे सब सेंटरों पर टीचर्स पढ़ाती है स्टूडेंट्स को यही मुरली, पढ़ाने की युक्ति भी बड़ी अच्छी है, चित्रों द्वारा समझानी भी अच्छी मिल सकेगी। मुख्य बात है गीता का भगवान शिव व श्री कृष्ण, फर्क तो बहुत है ना दोनों में, कहाँ श्री कृष्ण और कहाँ शिव बाबा, फर्क तो बहुत है ना। सदगति दाता स्वर्ग की स्थापना करने वाला अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म को फिर से स्थापन करने वाला शिव या श्री कृष्ण, मुख्य है ही तीन बातों का फैसला। तीन बातों का फैसला कौन सी तीन बातें, हाँ, परमात्मा सर्वव्यापी है या नहीं, दूसरा गीता का भगवान है या नहीं, शिव है या नहीं, और या श्री कृष्ण, और तीसरा फिर बाबा गंगा के लिए कहते थे गंगा पतित पावनी है या नहीं। तो मुख्य है ही तीन बातों का फैसला, इस पर ही बाबा जोर देते हैं, भल ओपिनियन लिखकर देते हैं। जब ये प्रश्नावली पूछते थे या एग्जीबिशन समझाते थे फिर लास्ट में ओपिनियन लिखवाते थे, तो ओपिनियन लिखकर भी देते हैं कि ये बहुत अच्छा है, परंतु इससे कुछ भी फायदा नहीं, केवल ये लिख देना बहुत अच्छा एग्जीबिशन है, ज्ञान बहुत अच्छा समझाया जाता है, पर ये खाली लिख देने से क्या फायदा, ये तो इससे तो कुछ भी फायदा नहीं, तुम्हारी जो मुख्य बात है उस पर जोर देना है। कि वो लिखे गीता का भगवान शिव बाबा है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, हाँ गीता ये पतित पावन शिव बाबा है ना कि गंगा, तो ये लिखे तब समझो कि हाँ ओपिनियन ठीक लिखा है। तो तुम्हारी जो मुख्य बात है उस पर जोर देना है, तुम्हारी जीत भी है इसी में, जब ये बड़े बड़े लोग भी मानेंगे। तुम सिद्ध कर बतलाते हो कि भगवान एक होता है, ऐसे नहीं कि गीता सुनाने वाले भी भगवान हो गए, अब जिसने गीता का पुस्तक भी पढ़ के सुनाया वो भगवान हो गए, ऐसे तो नहीं है। भगवान ने इस राजयोग और ज्ञान द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना की। तो बाबा समझाते हैं, अब बाबा फिर बच्चों पर आते हैं, हाँ बाबा बच्चों को शिक्षा दे रहे, पहले दूसरों को क्या समझाओ, अब बच्चों पर बाबा आते हैं। बाप बाबा समझाते हैं बच्चों पर माया का वार होता रहता है, हाँ बाबा जानते हैं बच्चों पर माया का वार होता रहता है, अभी तक कर्मातीत अवस्था को कोई ने पाया नहीं है, पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम एक बाबा की याद में सदैव हर्षित रहेंगे। जब एक बाबा की याद में सदैव हर्षित रहेंगे, समझो अभी अंत नजदीक है, सदैव हर्षित रहेंगे, कोई मुरझाइश नहीं आएगी। अभी तो सिर पर पापों का बोझा बहुत है, वो याद से ही उतरेगा। बाप ने पुरुषार्थ की युक्तियां बतलाई है, याद से ही पाप कटते हैं, पर बहुत बुद्धू है, अब बाबा कहते हैं कई बच्चे बहुत बुद्धू हैं जो याद में न रहने कारण फिर क्या करते हैं, बुद्धू अगर हो गए बाबा की याद नहीं रहती है तो वो याद न होने कारण क्या होता है, बहुत बुद्धू हैं जो याद में न रहने कारण फिर नाम रूप आदि में फंस पड़ते हैं, तो बाबा उनको टाइटल देते हैं बुद्धू, नाम रूप में कोई फंसता है वो बुद्धू है। हर्षित मुख हो किसको ज्ञान समझाए वो भी मुश्किल है, लेकिन उसी की याद उसको सताएगी जिसके नाम रूप में फंसा है, तो वो हर्षित होकर बाबा की याद में ज्ञान भी कैसे सुनाएगा। हर्षित मुख हो किसको ज्ञान समझाए वो भी मुश्किल है। आज किसको समझाया, चलो आज उसने समझा भी दिया, कल फिर घुटका आने से खुशी गुम हो जाती है। ये जिसके नाम रूप में फंसा हुआ है वहां बुद्धि चली गई बार बार, तो घुटका खाता रहता है, तो बाबा कहते खुशी गुम हो जाती है। तो समझना चाहिए ये माया का वार होता है। अगर खुशी गायब हुई माना माया का वार हुआ है। इसलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। बाकी क्या क्या करते हैं कई बच्चे, रोना पीटना व बेहाल नहीं होना है। बेहाल भी हो जाता है, मैं क्या करूं दादी, मैं क्या करूं बाबा, क्या करूं, इसको कहते हैं बेहाल होना। बाकी रोना पीटना व बेहाल नहीं होना है। समझना चाहिए अगर बेहाल होते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, दुखी होते हैं, तो बाबा कहते हैं, देखो बाबा ने और कड़ा शब्द यूज किया, तो समझना चाहिए माया पादर यानी जूता मारती है। अब किसी को कोई जूता मारे तो उसका क्या हाल होगा, उसको है ना लगेगा ना ये तो इंसल्ट हो गई, जूता मारा मुझे, तो माया ने जूता मारा। अगर रोते हैं, पीटते हैं, मुरझा जाते हैं, बेहाल हो जाते हैं, तो समझना चाहिए माया जूता मारती है। सिंधी में कहते पादर, पादर माना जूता, तो पादर मारती है। इसीलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। बाप की याद से बहुत खुशी रहेगी, मुख से झट वाणी निकलेगी। अगर बाबा की याद में और वो खुशी है तो मुख से ज्ञान निकलेगा। अगर बाबा की याद नहीं है, खुशी नहीं है, किसी के नाम रूप में फंसे हुए, तो ज्ञान भी मुख से नहीं निकलेगा। तो मुख से झट वाणी निकलेगी। पतित पावन बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, मनुष्य तो एक भी नहीं जिसको रचयिता बाप का परिचय हो। मनुष्य होकर और बाप को न जाने तो जानवर से भी बदतर हुआ। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है तो बाप को याद कैसे करे, श्री कृष्ण ही याद आता है ना, शिव बाबा कैसे याद आएगा, क्योंकि नाम ही बदल दिया गीता पर। यही बड़ी भूल है जो तुमको समझानी है। गीता का भगवान शिव बाबा है, वही वर्षा देते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता वो है, और धर्म वालों की बुद्धि में बैठता नहीं है कि मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक शिव बाबा है। बाबा कहते हैं वो तो फिर अपने धर्म पिता को ही सब मान, कुछ सब कुछ मानते हैं, और धर्म वालों की बुद्धि में बैठता नहीं, वो तो हिसाब किताब चुप कर वापस चले जाएंगे। शिव बाबा को तो याद नहीं कर सकेंगे, हिसाब किताब चुप कर वापस चले जाएंगे। पिछाड़ी में थोड़ा परिचय मिला समझो, और धर्म वालों को मिला, फिर भी जाएंगे तो अपने धर्म में, अपने धर्म में, फिर द्वापर युग में आएंगे या कलयुग में आएंगे। पर सत्युग में देवता धर्म के बने, उसके लिए तो फिर पुरुषार्थ करना पड़े, शिव बाबा को मानना पड़े, उनको याद करना पड़े, तब आएंगे। तो पिछाड़ी में थोड़ा चलो परिचय मिला, फिर भी जाएंगे तो अपने धर्म में। तुमको बाप समझाते हैं तुम देवता थे, अभी फिर बाप को याद करने से तुम देवता बन जाएंगे, विकर्म विनाश हो जाएंगे। फिर भी उल्टे सुलटे धंधे कर लेते, बाबा इतना समझाते हैं तुम मुझे याद करो तुम्हारे पाप नाश होंगे, तो बाबा कहते फिर भी उल्टे सुलटे धंधे कर लेते हैं। फिर बाबा को लिखते हैं, बाबा को फिर लिखते भी हैं, देखो क्या लिखते हैं, बाबा आज हमारी अवस्था मुरझाई हुई है। पत्र भी लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं जो स्थिति अंदर की है, बाबा को लिख करके बाबा के बॉक्स में डालते हैं, लेटर बॉक्स में, कभी झोपड़ी में, कभी बाबा के कमरे के बाहर। तो बाबा को लिखते हैं, बाबा आज हमारी अवस्था मुरझाई हुई है, बाप को याद नहीं किया। तो बाबा ने फिर बाबा क्या कहते हैं, याद नहीं करेंगे तो जरूर मुरझाएंगे। क्यों मुरझाई हुई, क्योंकि याद नहीं किया, याद नहीं किया, नाम रूप में कहीं फंसे हैं, कहीं अटके हुए हैं, कहीं पर हाँ मेरा मेरा कहा है, कुछ तो होगा ना, तभी तो फंसे हुए हैं। तो बाबा कहते बाप को याद नहीं किया, तो याद नहीं करेंगे तो जरूर मुड़ जाएंगे। यह है ही मुर्दों की दुनिया। अब क्या देहधारियों को याद करना, यह है ही मुर्दों की दुनिया। याद रखना कभी भी किसी के नाम रूप में आकर्षणों में याद रखना, ये मुर्दों की दुनिया है, ये है ही मुर्दों की दुनिया। सभी मरे पड़े हैं, तुम बाप के बने हो तो बाप का फरमान है, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। ये शरीर तो पुराना तमो प्रधान है, पिछाड़ी तक कुछ न कुछ होता रहेगा। हाँ, चत्तियां लगा करके चलाना इस शरीर को, पिछाड़ी तक कुछ न कुछ होता रहेगा। जब तक बाप की याद में रहे, कर्मातीत अवस्था को पाए, तब तक माया हिलाती रहेगी, किसको भी छोड़ेगी नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ेगी। तो जांच करते रहना चाहिए कि माया कैसे धक्का खिलाती है। भगवान हमको पढ़ाते हैं और ये बोलना क्यों चाहिए, क्यों बोलना चाहिए भाई, बाबा पूछते क्यों बोलना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। आत्मा कहती है, अब भगवान बाबा को याद करते समय आत्मा क्या कहती है, आत्मा कहती है हमारा प्राणों से प्यारा वो बाप ही है, हमारा प्राणों से प्यारा वो बाप ही है। ऐसे बाप को फिर तुम बोलते क्यों हो, देखो कहते भी है प्राणों से प्यारा अच्छे बाबा है हमारा, फिर ऐसे बाप को बोलते क्यों हो। बाप धन देते हैं दान करने के लिए, इतना ये ज्ञान धन बाबा ने दिया है, दान करो। अब मुरझाइश होगी, बाबा की याद नहीं होगी, खुशी नहीं होगी, कहीं उलझे हुए हैं, तो दान भी कैसे करेंगे ज्ञान दान। तो बाप धन देते हैं तो दान करने लिए, प्रदर्शनी मेले में तुम बहुतों को दान कर सकते हो। आते ही शौक से भागना चाहिए, शौक से भागना चाहिए। हाँ, टाइम मिले ओम शांति भवन में आ जाना चाहिए, बहुत सेवा है, इतनी पार्टियां आती है सब, यहाँ जो पार्टी समझाते कई बार थक जाते हैं, फिर बुलाते रहते हैं कि आओ पार्टियां बहुत आई है समझाना है। कभी म्यूजियम भी चले जाते हैं, वहां भी पार्टियां बहुत आती है। तो बाबा कहते हैं कि आप ही शौक से भागना चाहिए। अभी तो बाबा को ताकीद करनी पड़ती है, हमारे जो यहाँ जो संभालते हैं उनको बुलाना पड़ता है, भाई आओ पार्टियां आई है, पार्टियां समझानी है, तो बाबा कहते ताकीद करनी पड़ती है, माना उन्हें बुलाना पड़ता है कि आओ पार्टी समझाओ, जाकर समझाओ। उसमें भी अच्छा समझा हुआ चाहिए, ऐसे नहीं कोई भी आ जाए उसको पूरी समझ है नहीं और वो भी फिर क्या समझाएगा, तो अच्छा समझा हुआ होना चाहिए तभी समझाए। और दे अभिमानी का तीर नहीं लगेगा, वो व्यक्ति एकदम दे अभिमानी है, बाबा की याद उसको है ही नहीं, और वो बैठ के ज्ञान सुनाएगा तो उसका ज्ञान किसी के पल्ले नहीं पड़ेगा, उसका तीर लगेगा ही नहीं किसी को। तो दे अभिमानी का तीर लगेगा नहीं। तलवारें भी अनेक प्रकार की होती है ना, तीर भी अनेक प्रकार के होते हैं, कई तीरों में तो ऐसा वो जहर भी होता है, जैसे पक्षी को मारा तुरंत वो मर भी जाता है, तलवारें भी कई प्रकार की होती है। तुम्हारी भी योग की तलवार ना, योग की तलवार बड़ी तीखी चाहिए, जौहर चाहिए, अगर जौहर ही नहीं है तलवार को तो वो तलवार क्या काटेगी, कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी भी योग की तलवार बड़ी तीखी चाहिए, सर्विस का उल्लास चाहिए, बहुतों का जाकर कल्याण करें। बाप को याद करने की ऐसी प्रैक्टिस हो जाए, कैसी प्रैक्टिस हो जाए, जो पिछाड़ी में सिवाय बाप के और कोई याद न पड़े। कल भी बाबा ने ये कहा, कोई याद न पड़े, पर उसके लिए क्या चाहिए, बहुत काल का अभ्यास। अगर वो अभ्यास नहीं होगा तो अंत में बाबा की याद नहीं होगी। तो और कोई याद न पड़े तो तो ऐसी प्रैक्टिस हो जाए जो पिछाड़ी में सिवाय बाप के और कोई याद न पड़े, तभी तुम राजाई पद पाएंगे। अंत काल में अलफ को सिमरे और फिर नारायण को सिमरे, उसमें आता ना अंत काल जो नारायण सिमरे, तो बाबा कहते अलफ को भी सिमरे और नारायण को भी सिमरे। नारायण को सिमरने का मतलब क्या है बाबा बताते हैं, तो बाप को और फिर नारायण को सिमरना माना वर्षे को याद करना। तो बाप को याद करो और वर्षा याद करो, बाबा हमको क्या बनाते हैं, नर से नारायण बनाते हैं, तो नारायण को सिमरो। तो बाप और नारायण माना वर्षा ही याद करना है, परंतु माया कम नहीं है। बाबा इतनी ऊंची बात कहकर फिर कहते हैं परंतु माया कम नहीं है, कच्चे तो एक बन ढेर हो पड़ते हैं, ढेर हो पड़ते कच्चे। उल्टे कर्मों का खाता तब बनता है, उल्टे कर्मों का खाता तब बनता है जब किसी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। जरूर उल्टे कर्म का खाता बनेगा, क्योंकि देह को याद कर रहे हैं और देह को याद करना माना उल्टे कर्म का खाता बनता जाएगा। तो उल्टे कर्मों का खाता बन जाता है, बाबा के पास समाचार आते हैं, उल्टा सुल्टा काम कर फिर कहते हैं बाबा हो गया। अरे खाता उल्टा तो हो गया ना, अब कर्म तो तुमने कर लिया, फिर बाबा को लिखते बाबा माफ करो। हाँ बाबा कहते कर्म तो तुमने उल्टा कर लिया, ये शरीर तो पलीत है, अब शरीर के प्रति क्या आकर्षण, ये तो पलीत है, उनको तुम याद क्यों करते हो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदैव खुशी रहे, आज खुशी नहीं है कल फिर मुर्दे बन पड़ते हैं, मुर्दे बन पड़ते हैं कल। जन्म जन्म नाम रूप में फंसते आते हैं ना, तो आदत पड़ी हुई है नाम रूप में फंसने की, 63 जन्म तो ऐसे ही फंसे हैं, तो नाम रूप में फंसते आते हैं जन्म जन्मांतर से। स्वर्ग में ये बीमारी नाम रूप की होती नहीं है, वहां पर कोई किसी के नाम रूप में नहीं फंसता है, क्योंकि क्यों वहां नाम रूप में नहीं फंसते, क्योंकि बाबा कहते वहां तो मोहजीत कुटुंब होता है, सब मोहजीत है, किसी का किसी में कोई फंसता नहीं है, मोहजीत है, तो मोहजीत कुटुंब होता है। जानते हैं हम आत्मा है शरीर नहीं है, उनको ज्ञान है, देवताओं को आत्मा का तो ज्ञान है ना, वो है ही आत्म अभिमानी दुनिया, देह अभिमानी दुनिया नहीं है, द्वापर कलयुग है देह अभिमानी दुनिया, वो है ही आत्म अभिमानी दुनिया और ये है देह अभिमानी दुनिया। फिर आधा कल्प तुम देही अभिमानी बन जाते हो, अब बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी होने से क्या हो जाएंगे, बहुत मीठे शीतल हो जाएंगे, देही अभिमानी होने से बहुत मीठे शीतल हो जाएंगे, ऐसे बहुत थोड़े हैं। पुरुषार्थ कराते रहते हैं, हाँ बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं कि बाप की याद न भूलो, हाँ बाप की याद न भूलो। बाप फरमान करते हैं मुझे याद करो, चाट रखो, फरमान तो बहुत बड़ी चीज होती है, एक होती है राय देते हैं, फिर बाबा कहते हैं आज्ञा करते हैं, फिर बाबा कहते हैं फरमान करते, फरमान तो बहुत बहुत बड़ी चीज होती है, और फरमान अगर नहीं माना तो बहुत बड़ी सजा है। तो बाबा कहते हैं फरमान करते हैं बाप कि मुझे याद करो, चाट रखो, परंतु माया चाट भी रखने नहीं देती है, ऐसे मीठे बाप को तो कितना याद करना चाहिए, ये तो पतियों का पति बापों का बाप है ना, बाप को याद कर और फिर दूसरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है, इसमें दिलचस्पी बहुत अच्छी रखनी चाहिए, दूसरों को आप समान बनाने का पुरुषार्थ, बाबा कहते इसमें दिलचस्पी इसमें इंटरेस्ट बहुत अच्छी रखनी चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को तो बहुत सर्विसेबल बच्चों को तो बाप नौकरी से भी छुड़ा देते हैं, है ना। कई ऐसे बाबा के बच्चे इतने सर्विसेबल इतने सर्विसेबल, लेकिन क्या करें, नौकरी है तो इतना टाइम नहीं दे पाते हैं, तो फिर बाबा उनकी नौकरी भी छुड़वा देते हैं। हाँ, यहाँ भी कई होंगे समर्पित बैठे हैं जो लोग जो नौकरी करते थे लेकिन बाबा की सेवा बहुत करते थे, और फिर कैसे नौकरी बाबा ने छुड़वा दी। हाथों उठाए जिन जो लोग नौकरी करते थे और फिर कैसे बाबा ने छुड़वा दी, देखो कितने हाथ उठा रहे। बहनें भी देखो, हाँ नौकरी करती थी, उनको टीचर ने कहा कि वो क्या नौकरी टोकरी करे, छोड़ो बाबा की सेवा में लग जाओ। हाथ उठाओ बहने जो ऐसे हुई। हाँ देखो वो भी कितना हाथ उठा रही है, नौकरी टोकरी छोड़ दो ना, हाँ बाबा के अपना जीवन दे दिया। तो बाबा कहते हैं सभी से भी बच्चों को तो बाप नौकरी से भी छुड़ा देते हैं, सर्कमस्टांस देख कहेंगे अब इस घर देने लग जाओ, अब समर्पित हो जाओ। हाँ सर्कमस्टांस परिस्थिति ऐसे नहीं, अगर उसको लौकिक में कोई परिस्थिति है, कोई उनको जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी को ऐसे नहीं बाबा छुड़वाते हैं। जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है तो बाबा से छुड़वा देंगे कि तुम इस सेवा में लग जाओ, अब इस धंधे में लग जाओ। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, भक्ति मार्ग में भी चित्रों के आगे याद में बैठते हैं ना। भक्ति मार्ग में भी मंदिरों में कितने घंटों घंटों जाके बैठ जाते हैं, या घर में भी मंदिर होता है तो वहां मंदिर में मूर्ति के सामने बैठ जाते हैं ना। तुमको तो सिर्फ आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करना है, विचित्र बन विचित्र बाप को याद करना है, ये मेहनत है। हाँ यही मेहनत है। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है, याद दिलाते हैं बाबा मेहनत है, कोई मासी का घर नहीं है विश्व का मालिक बनना। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, हाँ मैं नहीं बनता हूँ विश्व का मालिक, तुमको बनाता हूँ। कितना माथा मारना पड़ता है बाबा को, माथा मारना पड़ता बच्चों को विश्व का मालिक बनाने के लिए, कितना माथा मारना पड़ता है। सपूत बच्चों को तो आप ही ओना लगा रहना चाहिए, लगा रहेगा सपूत बच्चों को, छुट्टी लेकर भी सर्विस में लग जाना चाहिए, ऐसे भी बहुत है छुट्टी लेकर के विदाउट पे, कई प्रोग्राम होता है मेला होता है जाना है तो छुट्टी लेते हैं विदाउट पे भी जाते हैं, कोई बात नहीं हमको तनख्वाह नहीं चाहिए, इतने दिन मेरी बाबा की सेवा मुझे करनी है, तो छुट्टी लेकर भी सर्विस में लग जाना चाहिए। कई बच्चों को बंधन भी है फिर मोह भी रहता है, एक तरफ तो बंधन है परंतु मोह भी रहता है। तो बाप कहते हैं तुम्हारी सब बीमारियां बाहर निकलेगी, अंदर जो मोह अटका हुआ है या जो भी कोई ऐसा संस्कार है वो निकलेगा बाहर। तुम बाप को याद करते रहो, माया तुमको हटाने की कोशिश करती है, बाबा से दूर करती है माया, कोशिश करती है। तो याद ही मुख्य है, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला बाकी और क्या चाहिए। भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते, मनसा वाचा करना किसी को दुख नहीं देते हैं, शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बनता जाता है। दुख नहीं देते हैं, शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बनता जाता है। अगर कोई नहीं समझते हैं, अब बाबा ने इतनी बातें कही फिर भी कोई अगर नहीं समझता है तो फिर समझा जाता है इनके भाग्य में नहीं है, तब यही कहेंगे इनके भाग्य में नहीं है, इतना बाबा मुरलियों में कहते फिर भी इस पर चलते नहीं, माना भाग्य में नहीं है। जिनके भाग्य में है वो अच्छी रीति सुनते हैं, अनुभव भी सुनाते हैं ना, पहले क्या क्या करते थे, कैसे थे हम बाबा के ज्ञान के पहले क्या थे, क्या करते थे, अब मालूम पड़ा है जो कुछ किया उससे दुर्गति ही हुई। बाबा का बनने से पहले जो कुछ भी किया उसे दुर्गति ही हुई। सदगति को तब पाए जब बाप को याद करें, बहुत मुश्किल कोई घंटा आधा घंटा याद करते होंगे, नहीं तो गुटखा खाते रहते हैं, नहीं याद करते तो बाबा कहते गुटखा खाते रहते हैं। तो बाप कहते हैं आधा कल तो गुटखा खाया, अब बाप मिला है, स्टूडेंट लाइफ है तो खुशी होनी चाहिए ना। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ है, इनसे और बढ़िया लाइफ क्या होगी। हमारे ब्राह्मण जीवन है स्टूडेंट लाइफ, तो स्टूडेंट लाइफ है तो खुशी होनी चाहिए ना। परंतु बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि याद भी तो एक सब्जेक्ट है ना। अगर याद भूल गई माने स्टूडेंट लाइफ ही भूल गई। तो परंतु बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, तो बाप कहते हैं तुम कर्म योगी हो, वो धंधा आदि तो करने ही है। हाँ, ऐसे नहीं है बैठ जाना है बस मुझे नौकरी छोड़नी है। बाबा कहते जब बाबा कहे, बड़े बड़े कहे तब छोड़नी, ऐसे नहीं बस नौकरी छोड़ के यहाँ कर बैठ जाना। बाप कहते तुम कर्म योगी हो, वो धंधा आदि तो करना ही है, नींद भी कम करना अच्छा है। ऐसे नहीं है 10 घंटा नींद चाहिए, 10 घंटा नींद नहीं चाहिए मुश्किल से। बाबा कहते योगियों की तो 4 घंटा ही बहुत है, 6 घंटा चलो मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। नींद भी कम करना चाहिए, याद से कमाई होगी, खुशी भी रहेगी। याद में बैठना भी जरूरी है, दिन में तो फुर्सत नहीं मिलती है, है ना। दिल में तो फुर्सत कहाँ मिलती है, कारोबार होता है। इसलिए रात को समय निकालना चाहिए, माना जल्दी उठ करके समय निकालना चाहिए। याद से बहुत खुशी रहेगी। किसको बंधन है तो कह सकते हैं हमको तो बाप से वर्षा लेना है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। अभी घर में बंधन है, सब तो सोए रहते हैं, और अगर हम जल्दी उठ जाते हैं तो कोई हमको रोकेंगे, क्यों तुम इतना जल्दी उठते, सो जाओ सो जाओ। तो हम क्या कहेंगे, नहीं हमें तो बाप को बाप से वर्षा लेना है, इसमें हमको कोई रोक नहीं सकता है, सवेरे में हम जरूर उठेंगे। क्यों मना करते हैं, कई मना करते हैं। कई बहनें बताती है कि वो हमको घर में जल्दी उठती हूँ, घर में तो मना करते भाई, क्यों मना करते, अभी तो सो जाओ इतना जल्दी थोड़ी उठना चाहिए। फिर कई तो सुस्त होते हैं, कह दिया सो जाओ सो जाते, लेकिन कई तो फिर समझदार होते हैं कि वो बोले कहे ना, उनको तो ज्ञानी है, हम तो बाबा के बच्चे बने हैं तो फिर नहीं सोते। तो बाबा कहते इसमें कोई रोक नहीं सकता है आपको, सो जाओ, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। सिर्फ गवर्नमेंट को जाए समझाओ कि विनाश सामने खड़ा है, यहाँ कुछ भी बात है ज्ञान देना है तो गवर्नमेंट को तो पहले समझाओ, एक समझाओ कि विनाश सामने खड़ा है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और ये अंतिम जन्म तो पवित्र रहना है, इसलिए हम पवित्र बनते हैं। अगर कोई जबरदस्ती अपवित्र बनाने की कोशिश करे तो भी आप केस कर सकते हो। आजकल तो वुमेन्स राइट्स भी बहुत हो गई है, कोई जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकता। तो बाबा कहते हैं और ये अंतिम जन्म तो पवित्र रहना है, इसलिए हम पवित्र बनते हैं। परंतु कहेंगे वो कौन, ऐसे कहेंगे जिनको ज्ञान की मस्ती होगी। अगर ज्ञान की मस्ती नहीं है तो फिर वो माया के मुरीद बन जाते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ आकर फिर देहधारियों को याद करते रहो, चलो बाबा के बन भी गए समर्पित भी हो गए, लेकिन फिर यहाँ आकर के भी देहधारी याद आए, यहाँ तो कोई देहधारी को याद नहीं करना है। तो ऐसे नहीं कि यहाँ आकर देहधारी को याद करते रहे, बे अभिमान में आकर लड़ना झगड़ना जैसे क्रोध का भूत हो जाता है। लड़ना झगड़ना क्रोध का भूत है, बाबा क्रोध करने वालों की तरफ कभी देखते भी नहीं है। हमको भी ऐसे ही करना चाहिए, कोई गुस्सा कर रहा है बस मुंह फेर दो, वहां से चले जाओ, उनके पास भी नहीं खड़े रहो। तो बाबा क्रोध करने वाले की तरफ कभी देखते भी नहीं है। सर्विस करने वालों से प्यार होता है, देह अभिमान की चलन दिखाई पड़ती है। बुलबुल तब बनेंगे जब बाप को याद करेंगे। हाँ, देह अभिमान की चलन दिखाई पड़ती है, पता चल जाता है ये बड़ा देह अभिमानी है। तो बुलबुल तब बनेंगे जब बाप को याद करेंगे। तो मूल बात ही ये है, एक दो को देखते बाप को याद करना है। सर्विस में तो हड्डियां देनी चाहिए, ब्राह्मणों को आपस में खीर खंड होना चाहिए, नून पानी नहीं होना चाहिए। समझ न होने के कारण एक दो से नफरत, बाप से भी नफरत लाते रहते हैं। एक दो से भी नफरत तो बाप से भी नफरत लाते रहते हैं। हाँ, बाबा के बारे में भी क्या क्या बातें कहेंगे, बड़ों के लिए भी क्या क्या बातें करेंगे, तो दूसरों में नफरत लाते रहते हैं। ऐसे क्या पद पाएंगे, तुमको साक्षात्कार होंगे। हाँ देखो, बाबा वार्निंग कर दे रहे हैं, तुमको साक्षात्कार होंगे, फिर उस समय स्मृति आएगी ये हमने गफलत की, ये हमने गलतियां की है, फिर उस समय स्मृति आएगी। बाप फिर कह देते हैं तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते हैं। हाँ, बाबा तो यही कहेंगे ना, तकदीर में नहीं है तो उनको कितना भी समझाया तो भी समझा नहीं, तकदीर में नहीं है तो बाबा भी क्या कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे, हाँ इतनी बाबा की प्यारी प्यारी, बाबा ने कितनी गहरी बातें बताई, धारणा की बातें समझाई, लेकिन कितना प्यार से। हाँ तो मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, निर्बंधन बनने के लिए क्या चाहिए। निर्बंधन सचमुच बनना है तो निर्बंधन बनने के लिए ज्ञान की मस्ती हो, ज्ञान की मस्ती हो, दे अभिमान की चलन न हो, आपस में लूं पानी होने के संस्कार न हो, देहधारियों से प्यार है तो बंधन मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो बंधन मुक्त होने के लिए क्या चाहिए, ज्ञान की मस्ती और आपस में खीर खंड, देहधारियों से प्यार से मुक्त, नाम रूप से मुक्त, बाबा कहते हैं तब निर्बंधन बन सकेंगे। दूसरा, कर्म योगी बनकर रहना है, याद में बैठना जरूर है, आत्म अभिमानी बन बहुत मीठा और शीतल बनने का पोषाद करना है, सर्विस में हड्डियां देनी है। वरदान, श्री मत से मन मत और जन मत, जन मत माना परमत, तो श्री मत से मन मत और जन मत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्व कल्याणी भव। बाप ने बच्चों को सभी खजाने स्व कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, श्रीमत में मनमत और जनमत को की मिलावट करना, ये अमानत में ख्यानत है। श्रीमत में मनमत और परमत मिलाना, जनमत मिलाना, ये अमानत में ख्यानत है। अब इस ख्यानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो, अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर स्व कल्याणी बनो। स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। किसको देखो, स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। स्लोगन, सदा हर्षित वही रह सकते हैं। कौन रह सकते सदा हर्षित, जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते हैं। सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते हैं। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। तो बाप और हम, कंबाइंड रूप है बाप और हम, ये कंबाइंड है, करावनहार बाबा और करने के निमित्त में आत्मा, इसको कहते हैं असोच अर्थात एक की याद। बाबा करा रहा है, मैं कर रहा हूँ, हाँ वो करावनहार करा रहा है मुझसे, मैं उनके अनुसार कर रहा हूँ, इसलिए ज्यादा सोचेंगे नहीं। तो इसको कहते हैं असोच अर्थात एक की याद। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती, शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती। जैसे बाप और आप कंबाइंड हो, शरीर और आत्मा कंबाइंड है, आपका भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है, ऐसे स्वसेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड हो तब मेहनत कम सफलता ज्यादा मिलेगी। कंबाइंड रूप में रहो सफलता कम ज्यादा मिलेगी, मेहनत कम हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे। अच्छा हाँ, ये अभी आप सबको मालूम हो कि आज से वार्षिक मीटिंग शुरू हो रही है शांतिवन में। बहुत बड़ी मीटिंग होती है, तो इस वर्ष 2025-2026 की वार्षिक सेवाओं की मीटिंग आज शाम 5 बजे से शांतिवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में आरंभ होगी। जो भी भाई बहनें मीटिंग में आमंत्रित हैं वो समय पर पहुंचे। मीटिंग के बैज शांतिवन के अकोमोडेशन ऑफिस से मिलेंगे। शांतिवन का जो अकोमोडेशन ऑफिस है वहां से मीटिंग के बैज शांतिवन के अकोमोडेशन ऑफिस से मिलेंगे। मीटिंग वालों में बैज लेना अनिवार्य है। मीटिंग वालों को बैज लेना अनिवार्य है। अच्छा, स्वदर्शन भवन के योगेश भाई के लौकिक पिता मंगाराम भाई ने कल 4 तारीख सुबह 8 बजे अपना भौतिक शरीर त्याग बाबा की गोद ली। सिकरी भरतपुर में वो 58 साल के थे। पिछले 12 वर्षों से ज्ञान में थे। हम सभी उस आत्मा के लिए योगदान देंगे। स्वदर्शन भवन के योगेश भाई बाबा के समर्पित बच्चे हैं। उनके लौकिक पिता ने शरीर छोड़ा, ज्ञान में थे 12 साल से। चलो उस आत्मा को हम योगदान देंगे। सब 3 मिनट बाबा की याद में रहे।